அரிஹந்தாணம் நமோ சித்தாணம் நமோ ஆயிரியாணம் நமோ உபஜ்ஜாயாணம் நமோ லோய் சப்புசாஹூணம். மரண ஔர் சமாதி மரண இன் பர் அப்னி பாத் சலி தி. एक मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव का मरण है जो बाल बाल मरण कहलाता है. एक सम्यक दृष्टि लेकिन असंयमी उसका मरण है, बाल मरण है. तीसरा व्रती सम्यक दृष्टि का बाल पंडित मरण है. और सकल संयमी पूर्ण संयमी मुनिराज का जो समाधि मरण होता है वो पंडित मरण है. फिर केवली भगवान की जब आयु पूर्ण होती है उस मरण को पंडित पंडित मरण कहते हैं, वो निर्वाण मोक्ष कहलाता है. पिछली बार सनत कुमार महामुनि की कथा आपने सुनी थी, जो पूर्व में चक्रवर्ती कामदेव रहे और आगे चलकर रोग परिचय की बाधा को सैकड़ों वर्षों तक जीतते हुए अंततः निर्वाण को प्राप्त हुए. आचार्य गुणभद्र स्वामी ने उत्तर पुराण ग्रंथ में उनको मोक्षगामी बतलाया है. और फिर कहीं कथाओं में भेद भी रहता है. तो मरण की चर्चा जैसे रविवार को अपन प्रातःकाल स्वाध्याय करते हैं मृत्यु महोत्सव का, और दोपहर को एक कथानक होता है. तो सनत कुमार मुनिराज का कथानक आपने सुना, और ऐसे कई पुराण पुरुष और कई प्राचीन ऐतिहासिक कथानक हैं, लेकिन कुछ इस युग के भी ऐसे दृष्टांत हैं जो बहुत ही मार्मिक है, हृदय स्पर्शी है, और अपने को संभलने का और अपने मार्ग को प्रशस्त करने का अवसर प्रदान करने वाले हैं. कभी हमने बताया भी हो, एक मुनि महाराज थे जिनकी रुचि प्रतिष्ठा विधि वगैरह में अधिक थी. पहले वो संभवतः प्रतिष्ठाचार्य रहे हैं, लेकिन आगे चलकर जब दीक्षा ले ली तब भी वो उन क्रियाओं में और सब विधियों में विशेष रुचि लेते थे. और कभी भी पंचकल्याणक महोत्सव होता था तो वहाँ पहुँच करके वो बतलाते थे कि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए. अब जब उनकी आयु ढलने लगी और बहुत निकट आ गया वो समय, तो उनका उस अंतिम समय की साधना पर कोई ध्यान नहीं था. और एक ऐसा वक्त आ गया कि वो विक्षिप्त जैसे हो गया, और कुछ भी बोलते थे वो, कोई ठिकाना नहीं था उनका. कभी नमो अरिहंताणम बोल दे, कभी जय बजरंगबली बोले, जय श्री राम बोल दे, राधे कृष्ण, कुछ भी. और कभी और भी कुछ किसी से बोलचाल हो जाए उनसे. तो एक उस समय कोई एक सज्जन थे, उनको लगा कि ये इतने समय तक मुनि रहे हैं और फिर सब साधना की है इन्होंने, अब अंत समय में इनकी स्थिति ऐसी बिगड़ गई है तो मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए. वो सेवा करने लग गए. तो सेवा करने लगे तो फिर वो बहुत तेज गुस्सा आता था उनको, महाराज जी को. तो वो कभी डांट भी देते थे, कभी चिल्ला भी देते थे, लेकिन फिर भी सेवा से पीछे नहीं हटे. कमंडल में पानी भर करके देना और सारी बातें. और वो मुनि महाराज कभी स्वाध्याय नहीं करते थे, स्वाध्याय नहीं करते थे, और कभी भी प्रतिक्रमण वगैरह भी किताब रखी हो तो रखी हो, वरना उनकी उसमें भी मतलब कोई रुचि नहीं और कोई ध्यान ही नहीं था कहना चाहिए. तो एक बार उनको ब्रह्मचारी को लगा कि जो सज्जन सेवा में थे, ब्रह्मचारी थे उस टाइम, उनको लगा कि चलो अब इनको महाराज जी को आज चतुर्दशी है तो याद आ जाएगा प्रतिक्रमण का. तो उनने किताब थी प्रतिक्रमण करने के लिए, विमल भक्ति संग्रह, सोनागिर की घटना है ये। तो फिर और देकर के बोलते हैं कि आज चतुर्दशी महाराज जी प्रतिक्रमण है आज आपका, तो फिर बोले कि मेरे को सिखा था, और वो किताब उनने ऐसे करके फेंक दी, उनने ऐसे उठा करके ऐसे सिर पर लगा के फिर व्यवस्थित रख दी। ये सब देखते रहे वो, और जब शाम ढली तब उन्होंने बुलाया उनको कि इधर आना जरा तुम, आज मैंने जिनवाणी फेंकी थी क्या? तो बोले महाराज जी विमल भक्ति संग्रह थी, उसमें सब प्रतिक्रमण पाठ थे, आज चतुर्दशी थी तो मैंने आपको देना चाहा, लेकिन ठीक है महाराज जी। तो फिर बोले मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने ये क्या कर डाला। एकदम उनको पश्चाताप आया और एकदम आंखें भर सी आई उनको, गला भी भर गया उनका, और बोले कि अब मेरी क्या गति होगी। बोले तुम मेरी संलेखना करा दो, बोले ऐसे उनको भावना आई, यानी कब किसकी मति पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, और कब बिगड़ जाए इसका भी ठिकाना नहीं। तो फिर उन्होंने बोला कि महाराज जी मैं बात करता हूँ, यहाँ और आचार्य लोग हैं, तो उस समय वहाँ और भी आचार्य संघ थे, उन्होंने सबसे बात की, लेकिन सब लोग बोलते थे कि अरे वो तो विक्षिप्त हैं, उनकी हम कैसे संलेखना कराएंगे, वो तो कुछ अनर्गल चेष्टाएं करते हैं, उनकी कहाँ से संलेखना होगी। बोले कि नहीं महाराज आज वो बहुत अच्छी तरह से बोल रहे हैं, फिर बहुत भाव विभोर होकर के बोल रहे हैं, वो जो भी रहा होगा कर्म का उदय वो अभी शांत दिखता है। तो फिर उन महाराजों ने बोला कि ठीक है हम देखते हैं, उनसे बात करके देखेंगे, फिर बाद में सोचेंगे। तो बातचीत की उनसे, उन्होंने आकर के बिल्कुल विधिवत पूरा निवेदन किया, और फिर उन महाराजों को भी लगा कि विधि तो पूरी व्यवस्थित कर रहे हैं, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, जो कुछ हुआ सो हुआ, अब इनको प्रायश्चित और फिर जो कुछ भी करना है वो पूरी विधि से करा दें। और जब प्रारंभ किया उन्होंने संलेखना का क्रम, तो इन्होंने 48 घंटे तक लगभग आहार जल का त्याग रखा, और फिर समय बहुत ही निकट था, शांतिपूर्वक पूरे संघों के साधुओं के कंठ से उच्चारित नमोकार मंत्र के पाठ के बीच शांतिपूर्वक अपना जीवन पूर्ण किया। यानी किसी के बारे में कभी भी कोई निर्णयात्मक विचार अपने मन में तत्काल लाना उचित नहीं है। कभी कभी होती है त्रुटियां, कई प्रकार की त्रुटियां होती है, उसमें भावना ये होना चाहिए कि सुधार हो, और सुधार की भावना से कभी कभी सफलता भी मिलती है, सुधार होता भी है, प्रयास करने पर पुरुषार्थ भी हो साथ में भावना भी हो और सही तरीके से हो काम तो हो भी जाता है। और ऐसी एक घटना और दक्षिण भारत के कुछ लोग बतलाते हैं जहाँ पर वो घटना घटी थी, और हमें एक विद्वान ने बतलाई थी कि एक बार किसी गांव में कोई महाराज थे, और उनका भी समय बहुत निकट आ गया था, तो उनके साथ एक और साधु थे जो उनके द्वारा दीक्षित थे, उन्होंने कुछ ज्योतिर्विद्या से बताया जान करके कि 13 दिन बाकी हैं, उस विद्या में विद्वान थे वो, 13 दिन बाकी ही बोले। तो फिर गुरु महाराज तो एकदम सरल भोले वाले साधु थे, जैसे सवेरे हमने जो घटना सुनाई थी धर्मसागर आचार्य महाराज की, वो महाराज भी बहुत सीधे सरल प्रकृति के थे। तो फिर उनने बोला कि भाई बताओ कैसा क्या करना, संलेखना तो करना ही है मेरे को। तब उनने ऐसे ही अपने विचार से परामर्श दिया कि अब 13 दिन बचे हैं, तो फिर आपने जीवन भर तपस्या करी है, आहार जल छोड़ सकते हो। तब उन्होंने कहा कि ठीक है आहार जल का त्याग, लेकिन संलेखना का क्रम थोड़ा भिन्न है शास्त्रों में, एकदम एक झटके में आहार जल का त्याग कभी कराया नहीं जाता, उसका एक क्रम होता है। शरीर की भी एक प्रकृति है, और शरीर एकदम एक झटके में त्याग करने पर कभी कभी सहन नहीं कर पाता। तो वो स्थिति ऐसी बन गई कि कुछ दिनों में उनको वेदना सताने लग गई। क्षुधा वेदना को तो उन्होंने किसी प्रकार से जीता, क्योंकि क्षुधा वेदना को साधु हमेशा जीतते ही रहते हैं। जीवन भर एक बार भोजन करने पर वो स्थिति तो आती है करीब करीब, लेकिन प्यास की जो व्यथा होती है वो बहुत भयानक होती है। बहुत कुछ व्यक्ति सहन कर सकता है, लेकिन प्यास सहन करना बहुत कठिन काम होता है। 5-7 दिन व्यतीत हो गए निराहार निर्जल अवस्था में, फिर गला भी सूखने लगा, और फिर नमोकार मंत्र का उच्चारण करना चाहते थे तो भी आवाज थोड़ी सी अस्पष्ट निकलती थी। उन्होंने फिर कह दिया अंत में कि मुझे बहुत तीव्र प्यास लग रही है, अब मुझसे सहन नहीं होता। 8वें दिन तो इतनी स्थिति बिगड़ गई कि उन्होंने कहा कि यदि मुझे पानी पीने नहीं मिला तो मैं मर करके तालाब में कोई प्राणी बन जाऊंगा। बोले मैं तालाब में पैदा होऊंगा। बोले पानी पीने अगर मुझे नहीं मिला यहां, मैं भले अभी ठीक है जाने दो, मेरे को साधु हूं कुछ भी हूं मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे को अब प्यास सहन नहीं होती। तब संबोधन में ये सब बातें कही कि तुमने नरकों में कितने सागरों तक प्यास को सहन किया, और फिर तिरंज गति में भी कितने कष्टों को सहन किया। सब बहुत सारी बातें, उपदेश की बातें अलग होती है, और फिर जब प्रैक्टिकल जब सहन करने का समय आता है तब एक अलग अनुभव होता है। तो सब कुछ समझाने के बावजूद उन्होंने कहा कि अब मैं कुछ भी नहीं सुन सकता, मुझे नमोकार मंत्र मत सुनाओ। बोले मुझे पानी चाहिए। इतनी विकट स्थिति हो गई, लोग चिंतित हो गए, और फिर वो जो उनके शिष्य थे वो बोल रहे थे कि नहीं पानी नहीं मिलेगा, आपने त्याग किया है 13 दिन के लिए, वो पूरा त्याग रहेगा, और त्यागी हुई वस्तु ग्रहण करना दोष है। लेकिन वो थोड़ी देर शांत रहते थे, लेकिन फिर बोलते थे कि पानी पानी पानी। बहुत तकलीफ हो रही थी उनको। तो कुछ बुजुर्ग श्रावकों ने वहां पर उस गांव में विचार किया कि ऐसे में तो न संलेखना होने वाली है और न सदगति होने वाली है। तो पास में कुछ किलोमीटर दूर, कुछ मील दूर, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज श्री विराजे हुए थे। उनके पास ये कुछ लोग चले गए, श्रावक लोग। बोले कि हमारे यहाँ ऐसी ऐसी परिस्थिति बन गई है, अब आप बताइए क्या करना। उनको तो इतनी प्यास की वेदना हो रही है कि वो बोल रहे हैं कि मैं मर करके मगरमच्छ बनूंगा। आचार्य शांति सागर महाराज श्री ने बोला कि उनको आप खबर कर देना कि हम आ रहे हैं, और वहां से विहार करके वो सीधे पिछली कमंड उठा करके चले गए वहां उस गांव की तरफ। वो लगभग 13-14 किलोमीटर या मील रहा होगा। वहां पहुंचने के बाद वो कमरे के बीच में ऐसे हवा वाले स्थान में, दोनों दरवाजों के बीच में रखा था उनका तख्त, ताकि हवा लगने से थोड़ी राहत मिले। लेकिन क्या है कि 8 दिन की जो प्यास होती है उसमें क्या राहत मिलेगी। वो तो ठीक है, एक सही स्थान था एक हिसाब से देखा जाए तो हवा तो चल रही थी, लेकिन महर्षि बहुत व्यतीत थे, पानी 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 पानी। आचार्य शांति सागर महर्षि के पहुंचने का समाचार मिला तो फिर उनको लगा कि आचार्य शांति सागर महाराज आ रहे हैं, लेकिन अब आचार्य आ रहे हैं ये समाचार तो मिल गया, पर वेदना का क्या होगा, वो तो व्यथा तो जारी है। फिर आचार्य श्री जब वहां पहुंचे तो आचार्य श्री ने ऐसे देखा उनको, देखा बहुत शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया है 8 दिन के उपवास और फिर निर्जल उपवास के साथ। उनकी शरीर की स्थिति देखी और उसके बाद अंदर आकर के ऐसे पिछी हाथ में लेकर उनकी ऐसे 3 परिक्रमा लगाई। और वो बोलते हैं कि अरे मैं मुनि हूँ, आप आचार्य हो। तो आचार्य महाराज ने ऐसे फिर नमोस्तु किया। तो बोले कि आप आचार्य होकर मुझसे नमोस्तु कर रहे हैं। तब आचार्य महाराज बोले कि संलेखना धारण करने वाला साधु आचार्य से भी बड़ा होता है। फिर बैठे उनके पास और काफ़ी समय तक चर्चा करते रहे और बोले कि आपको बहुत वेदना हो रही है, कोई चिंता मत करिए, हम आचार्य होने के नाते आपको जल ग्रहण करने की अनुमति देते हैं। तब उन मुनिराज ने एकदम गला भराया उनका, बोले कि अब मुझे जल ग्रहण नहीं करना। क्यों नहीं करना? बोले कि अमृत पीने के बाद अब जल की कोई आवश्यकता नहीं रह गई, आपने अमृत पिला दिया है। और फिर वो जो 5 दिन पूरे हुए उनके, आचार्य महाराज वहीं रहे शांति सागर महाराज, और अंत में उनकी संलेखना शांतिपूर्वक पूर्ण हो गया। अब ये तो आचार्य शांति सागर महाराज श्री के ध्यान और साधना का भी प्रभाव होगा उसमें, हम ऐसा समझते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे शब्दों से या फिर कुछ आप कोई किताब लेकर के पढ़ा दो और सुना दो उससे कोई फर्क पड़ जाता हो, ऐसा हम नहीं समझते। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं लेकिन कुछ नहीं, वो जहाँ के तहाँ रहते हैं। ये निश्चित रूप से आचार्य महाराज की साधना का प्रभाव था कि उनके जाने के बाद जो कुछ उनने बोला होगा उस समय, क्या बोला ये तो अपने बस की बात नहीं, अपन नहीं समझते, लेकिन बस उनने जो कुछ बोला होगा वो अपने अनुभव से और अपने अंतरंग से बोला होगा और उसका असर निराला होता है। श्वेतांबर मत में एक वाक्य आता है कि साधु का मौन भी विद्वान के भाषण से बढ़कर होता है। वाक्य बिल्कुल अकाट्य है, साधु का मौन भी विद्वान के भाषण से बढ़कर होता है। तो फिर वो साधु जब आचार्य शांति सागर महाराज श्री बोले होंगे तो फिर क्या असर रहा होगा, सोचने की बात। मौन रहने पर ही विद्वान के भाषण से बड़ा होता है असर, तो बोलने पर क्या असर हुआ होगा। आचार्य शांति सागर महाराज जी की आवाज आप लोगों ने सुनी है, शायद सुनी होगी, उस दिन जब स्मृति दिवस था तब वो एक ध्वन्यालेख ब्रह्मचारी जी ने शायद बजाया हो, मराठी भाषा में बोला है उन्होंने, लेकिन इतने उपवासों के बाद कितनी शांत ध्वनि में उन्होंने उपदेश दिया, बिल्कुल आवाज में तेजी नहीं है, एकदम शांति से उन्होंने बहुत सुंदर उपदेश दिया है। संयम धारण करा भीव नको, ऐसे मराठी भाषा में उन्होंने वाक्य बोले हैं, संयम धारण करो, डरो मत, और बहुत सारी बातें उन्होंने बोली उसमें। तो उनकी संलेखना उस समय पूर्ण हुई, लेकिन फिर वो जो पूरे 13 दिन का निर्जल उपवास नियम देने की प्रेरणा करने वाले जो साधु थे उनसे आचार्य शांति सागर जी ने कहा कि ऐसा त्याग नहीं कराना, त्याग जो होता है वो क्रम से करना चाहिए। और फिर स्वयं आचार्य शांति सागर महाराज जी ने कहा कि आखिरी में जब 36 दिन की उन्होंने संलेखना धारण की थी तब उन्होंने अंतिम 10 दिनों तक पानी का त्याग रखा था, यानी 10 दिन पहले तक उन्होंने जल ग्रहण किया। और उन्होंने एक बार कहा था कि मेरी क्षमता तो थी पूरा त्याग कर देने की, लेकिन मैंने पूरा त्याग जानबूझकर नहीं किया। उसका कारण यह था, जैसे तीर्थंकरों के पास क्षमता होती है ना आहार नहीं लेने की, बिना आहार लिए भी वो आसानी से अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। तीर्थंकरों के पास एक दीप्त तप नाम की रिद्धि होती है, धवला की 9वीं पुस्तक में लिखा है, सब काल उवासो वि संतो शरीर तेज उज्जो ये 10 दिशो। सर्व काल उपवास करते हुए भी अपने शरीर के तेज से 10 दिशाओं को प्रकाशमान करने वाले वो रिद्धिधारी मुनि दीप्त तप रिद्धि के धारक होते हैं। खुदा भावा, क्षुधा का अभाव हो जाता है उनके अंदर, इसलिए उनको कभी भी आहार की जरूरत ही नहीं पड़ती, दीप्त तप रिद्धिधारी। और तीर्थंकरों के पास होती है वो क्षमता, लेकिन तो भी तीर्थंकर भगवान आहार के लिए उठते हैं। क्यों उठते हैं? तो आचार्यों के वचन अगर अपन देखें तो पुराणों में स्पष्ट उल्लेख है कि यद्यपि उनके अंदर शक्ति थी निराहार रहने की, उपवास करने की, लेकिन तो भी आगामी मुनियों के हित में और समस्त साधुओं को साधु कैसे आहार लें इसकी जानकारी देने के लिए वो तीर्थंकर होने के नाते आहारचर्या के लिए उठे। और हर तीर्थंकर उठते हैं, क्योंकि पिछले तीर्थंकर ने आहार कैसा लिया था वो उनके तीर्थ की व्यवस्था हो गई, अब अपने तीर्थ में अपने को कैसे आहार लेना ये अपने तीर्थंकर जैसा बताएंगे वैसे लेंगे। तो आदिनाथ भगवान ने 6 महीने बाद आहार के लिए उठने का उपक्रम किया, और कुछ तीर्थंकरों ने 3 उपवास के बाद आहार के लिए उठने का उपक्रम किया, और बाकी ने बेला के उपवास के बाद आहार ग्रहण किया है। और प्रथम दातार को भी वो धन्य करते ही हैं, ये भी एक नियोग है समझ लो, कि जिसके यहाँ आहार हो जाए तीर्थंकर के वो तो धन्य भाग्य है। अगर सामान्य साधु के भी आहार हो जाए तो साधु के चरण घर में पड़ जाना बहुत बड़ी बात है। वो तो क्या हो गया कि अभी सांसारिकता में मन इतना ज्यादा उलझ गया मनुष्यों का कि ये धर्म एक प्रकार की औपचारिकता मात्र रह गई। कड़वा सच है, सुनने में बुरा लग सकता है, लेकिन स्थिति ऐसी बन गई कि सब एक औपचारिकता जैसी हो गई, और यथार्थ जो अंदर की भावना होनी चाहिए वो कहीं मिलती है, ऐसा नहीं है कि उसका अभाव हो गया हो। अभाव हो जाएगा तो यहाँ की स्थिति पूरी बिगड़ जाएगी धरती की, फिर भारत देश का क्या होगा भगवान जाने। अभाव तो हुआ नहीं है, वो भावना आज भी है, लेकिन या तो कम समय तक रहती है वैसी भावना, या फिर बहुत दिनों बाद कभी एकाध दिन वैसी भावना आती है, जो भावना दर्शन करते ही साथ अंदर आनी चाहिए हृदय में, जो साधु को देखते ही साथ। पद्म पुराण में आचार्य रविशयन स्वामी कहते हैं कि साधु को देखकर जो उठकर खड़ा नहीं होता और हाथ नहीं जोड़ता वो स्पष्ट मिथ्या दृष्टि है, उसके लिए और कोई पहचान की जरूरत नहीं है। साधु को देखने पर भी जो खड़ा नहीं होता, मतलब इतनी विनय भी जो नहीं कर सकता, वो तो मिथ्या दृष्टि है ही है। और जैसे आप देवशास्त्र गुरु की पूजा कर रहे हैं, उस समय पूजा में आपका मन मान लो तल्लीन है, मन तो लगना चाहिए, सही बात है, और आपकी दृष्टि पड़ जाए कोई साधु आए मंदिर में, तब क्या करेंगे आप? पूजा पूरी करके तुरंत साधु की सेवा में जाएंगे ना? पूछेंगे आप कि आपका आहार वगैरह कैसे हुआ, विहार वगैरह ठीक चल रहा है? ये सब बातें तो एक व्यवहार में पूछी जाती है साधु से, रत्नत्रय कैसा है ये भी पूछेंगे, कुशलता है, शरीर साथ दे रहा है, ऐसी सब बातें होती हैं। लेकिन उस समय जब आप पूजा कर रहे हैं, उस समय अगर साधु आ गए तब क्या करेंगे आप? पूजा पूर्ण करेंगे या फिर बीच में नमस्तु कर सकते हैं क्या साधु को? बीच में नमस्तु कर सकते हैं क्या पूजा के बीच में? पूजा में आपने मतलब आह्वान, स्थापन, सन्निधिकरण सब विधियां की हुई है वहां पर, और उस समय अगर साधु आ गए तो बीच में आप नमस्तु कर सकते हैं क्या? ये इंटरव्यू है, इसमें पास और नापास का फैसला हो जाएगा अब भी। कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? और नहीं कर सकते तो उसका तो जवाब है ही आपके पास कि हम तो उसमें तल्लीन है, पूजा में भक्ति में मन लगा हुआ है। सबसे सीधी सरल बात तो उसमें यह है कि पूजा देव शास्त्र गुरु की कर रहे हैं, अब गुरु की पूजा कर रहे हैं और गुरु सामने आ जाए तो नमस्कार नहीं करोगे क्या? मैंने इतनी सरल बात है वो, मतलब कोई अंगूठा छाप व्यक्ति भी बता सकता है, कि आप गुरु की पूजा कर रहे हैं और गुरु अगर सामने आ जाए तो नमोस्तु न करना, ये कहाँ का गणित है? बहुत खुशी के साथ, बहुत भक्ति के साथ, हार्दिक भावना के साथ नमस्कार कर सकते हैं, उसमें कोई पाप नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सारी बातें, आज के युग में भावना बहुत क्षीण होती जा रही है, धीरे 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 धीरे। अब जब मनुष्य पर मुसीबत आती है तो देरोल भागता है, मनुष्य पर मुसीबत आती है तो और अतिशय क्षेत्रों में महावीर जी जाता, भातकुली जाता, कहीं कहीं दूर दूर भटकता है। लेकिन हृदय की भक्ति क्या कह रही है या हृदय क्या कह रहा है, यहां देखने की बात है। जाने का मना नहीं है, जरूर जाना चाहिए। अगर मुसीबत में आप भगवान के पास जा रहे हो तो फिर वो बात प्रशंसनीय है, क्योंकि मुसीबत में लोग तो कहीं से कहीं चले जाते हैं, आप भगवान के पास जा रहे हो बहुत अच्छी बात है। और अपनी तकलीफ अगर आप भगवान को बताते हैं तो भी कोई बुरी बात नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा तर्क होगा कि भाई ये तो वीतराग भगवान है, उनके पास आप अपनी फरियाद लेकर के क्यों जा रहे हो, क्या जरूरत है वहां पर, वो तो कुछ देते लेते नहीं है, तो फिर अपनी वेदना उनको बताने से क्या मिलने वाला है तुमको, भले कुछ मिले या न मिले। लेकिन जैसे बच्चा माँ को सब कुछ बता देता है, जैसे शिष्य गुरु को सब कुछ बता देता है, वैसे ही भक्त भगवान को सब कुछ बता सकता है, उसमें कोई पाप नहीं है। बस ये है कि वो भगवान के पास जा करके उल्टा सीधा ना करे कुछ भी। अभी क्या है, हिम्मतनगर की हमने थोड़े अध्ययन किया, हिम्मतनगर का, और फिर वहां हमने ये कुछ देखा थोड़ा सा कि भावनात्मक दोष नहीं है सबके अंदर, देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति है लगभग, बस कुछ वातावरण में कुछ ऐसी बात है कि जो कहीं से ब्लॉक हो रही एनर्जी ऐसा लगता है, और उसके कारण पर हमने एक संकेत कुछ समय पहले किया था, और उस संकेत पर आप जितने जल्दी गौर करेंगे और जितने जल्दी उसका समाधान निकालेंगे आप, उसके बाद देखिएगा कि क्या परिणाम निकलता है। और जितना देर करेंगे तो फिर उतनी घटनाएं और आप झेल लेना, ये भी सुन लो आप, ठीक है ना। क्योंकि जिनेंद्र भगवान की अभिनय जिनेंद्र भगवान के पास आकर के करना, आप बाहर जाकर के तो दुनिया में कुछ भी करते रहो, लेकिन भगवान के मंदिर में भगवान का अनादर, ये तो समाज के लिए हितकारी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। उसके लिए आप वैकल्पिक व्यवस्था या जैसी भी व्यवस्था हो, ये जो लोग समझ रहे होंगे वो समझ रहे होंगे, जो नहीं समझ रहे हैं वो निश्चिंत रहना, बिल्कुल शांति से आप अपनी भक्ति भावना रखना, जो समझ रहे हैं वो इस बात पर गौर करना। क्योंकि ठीक है हम छोटे हैं, लेकिन हम जो भगवान के सामने आपके हित की बात कर रहे हैं उसमें हमें विश्वास है कि हम बेईमानी नहीं करेंगे आपसे, जो बताएंगे वो आपके हित में बताएंगे, और आप उस पर ध्यान दें या ना दें ये आपकी मर्जी है, हम दबाव तो नहीं डाल सकते। लेकिन वेदना जरूर होती है कई बार जब भगवान की अभिनय आंखों के सामने होती है, तो इसलिए उस अभिनय से अगर आप बचा लें, मंदिर में अगर पूरी तरह विनय हो जाए भगवान की, तो फिर माहौल बदल जाएगा। एक छत्र अगर सही हो जाता है मंदिर का तो पूरे नगर का वातावरण बदल जाता है, इतनी शक्ति होती है भगवान के वातावरण की। छत्र मात्र सही हो जाए पूरे नगर का वातावरण बदल जाता है। तो इसको मामूली बात मत समझो आप, क्या है कि सुधा सागर महाराज जी तो बहुत कड़क भाषा में बोलते हैं, वो बोलते हैं कि अगर नहीं कर सकते काम तो फिर मत करो, बोले जाओ निकल जाओ बाहर, और भी कड़क बोलते हैं वो, तो हम तो बोल ही नहीं सकते उस भाषा में, वो लैंग्वेज हमारी है ही नहीं। लेकिन गंभीर बात है, इस पर फिर विचार कर लेना बार बार, थोड़ा सा पता नहीं कब, जैसे बताते हैं ना प्रतिक्रमण में 24 भगवान की स्तुति मुनि को 4 बार करना चाहिए। बोले किसी ने पूछा क्यों 4 बार करना चाहिए, बोले कि एक आध बार तो मन लग जाएगा, मन बहुत चंचल है, मुनि का मन भी अस्थिर रह सकता है, लेकिन बोले कि एक बार अगर लग गया मन तो फिर सार्थक है 4 बार करना। और दृष्टांत दिया, अंध घोटक दृष्टांत, एक राजा का घोड़ा, उसकी आंखों में कुछ तकलीफ हो गया तो दिख नहीं रहा था उसको, तो फिर वो अश्व वैद्य था उनके यहाँ, बहुत बड़ा वैद्य था, आजकल तो वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं ना जानवरों के डॉक्टर, तो वो अश्व वैद्य, घोड़ों का वैद्य था, स्पेशल सिंध देश के घोड़े और फिर चीन के घोड़े, अलग अलग देशों के घोड़े थे राजा के यहाँ। अब वो जो घोड़ा था उसकी आंखों से दिख नहीं रहा था, तो फिर राजा ने बुलवाया वैद्य को। अब वैद्य बाहर गांव गया था, तो फिर राजा ने उसके पुत्र को बुलवाया, बोले कि तुम ठीक करो इसको, अभी तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम समझदार हो, इसको ठीक कर सकते हो, करो। अब वो लड़का घबराया, बोले कि मैं बिल्कुल इस मामले में अनभिज्ञ हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता। अब राजा का आदेश था कुछ भी करो, बोले वो ठीक होना चाहिए घोड़ा, और वो जानता था कि अगर राजा भड़क गया तो फिर खैर नहीं। तो उसने जो पिताजी ने जो जड़ी बूटियां वगैरह रखी थी घोड़े के उपचार के लिए, तो उसमें से कुछ जड़ी बूटियां उठाई और फिर कूट काट करके उसने ऐसे आंखों में लेप लगा दिया।